एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है एक और ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, जर्मन साहित्य की दुनिया में।
हाँ, ये सिर्फ कहानियों या कविताओं की बात नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी देश का साहित्य उसकी पहचान, उसके इतिहास और उसकी आत्मा का आईना बन जाता है।
बिल्कुल, और इस सफर में हमारे गाइड है निकोलस बॉयल, जिनके विश्लेषण पर आज हमारी चर्चा आधारित है।
हाँ, और ये विषय आज इसलिए भी खास है क्योंकि जर्मनी का उदाहरण हमें दिखाता है कि जब कोई देश लंबे समय तक राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ हो, तब भी उसकी संस्कृति, खासकर उसका साहित्य, कैसे उसे एक पहचान दे सकता है, उसे जोड़ सकता है।
सही कहा, ये सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं, इसमें हम सबके लिए कुछ सीखने को है कि कैसे कला और विचार समाज को दिशा देते हैं, खासकर मुश्किल दौर में।
बिल्कुल, तो चलिए पहले हमारे मार्गदर्शक निकोलस बॉयल से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। ये कौन है और जर्मन साहित्य पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों मानी जाती है?
हाँ, तो निकोलस बॉयल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जर्मन साहित्य के एमेरिटस शोडर प्रोफेसर रह चुके हैं। मतलब आसान शब्दों में कहें तो,
हाँ,
अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में जर्मन साहित्य के सबसे बड़े जानकारों और सम्मानित नामों में से एक हैं वो।
अच्छा, और उनकी खासियत क्या है? मतलब वो जर्मन साहित्य को किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद उनका वो बड़ा नजरिया है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किताब में क्या लिखा है।
अच्छा।
वो इतिहास, दर्शन, समाज में क्या चल रहा था, इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं। उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि शायद जर्मनी के महानतम लेखक योहान वोल्फगैंग फॉन गोएथे पर लिखी उनकी कई वॉल्यूम वाली जीवनी से है।
वो तो मतलब मील का पत्थर मानी जाती है।
अरे वाह, तो ये जो गहरा ज्ञान है ना, ये उन्हें सिर्फ ये बताने में मदद नहीं करता कि जर्मन साहित्य में क्या लिखा गया, बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे लिखा गया। वो साहित्य को जर्मन सोच और समाज की बड़ी कहानी का एक अटूट हिस्सा मानते हैं।
अच्छा, तो अगर बॉयल के पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालना हो, उनका केंद्रीय विचार क्या है? जर्मन साहित्य की कहानी का सार क्या है उनके हिसाब से?
हाँ, तो बॉयल का मुख्य तर्क जर्मनी के एक बहुत ही अनोखे ऐतिहासिक तथ्य से जुड़ा है।
क्या?
कि सदियों तक एक एकीकृत राष्ट्र राज्य का न होना, मतलब जहां फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ साथ राष्ट्रीय साहित्य पनपा, वहीं जर्मन भाषी इलाके लंबे समय तक छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटे रहे। कोई एक एक राजनीतिक छत नहीं थी।
तो इस राजनीतिक बिखराव का साहित्य पर क्या असर पड़ा? ये तो अजीब लगता है, एकता न होने से साहित्य कैसे पनपा?
यही बॉयल का सबसे दिलचस्प तर्क आता है। वो कहते हैं कि इसी राजनीतिक खालीपन में जर्मन भाषा और साहित्य ने, मतलब क्या है, इस पर बहस हुई, इसे गढ़ा गया और इसे संजोया गया।
अरे वाह,
ये उन लोगों के लिए एक तरह का आध्यात्मिक घर बन गया।
वाह, यानी राजनीति नहीं तो साहित्य ही देश बन गया। ये तो कमाल की बात है। तो इसी वजह से जर्मन साहित्य में हमें अक्सर दर्शन, आत्मा की खोज, पहचान के सवाल इतने ज्यादा मिलते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब राष्ट्र बाहर नहीं बन पा रहा था तो उसे अंदर विचारों में, भाषा में, संस्कृति में खोजा जा रहा था। बॉयल हमें इसी यात्रा पर ले जाते हैं।
कैसे?
कैसे लूथर के बाइबल अनुवाद से भाषा की नींव पड़ी, फिर ज्ञानोदय ऑफ क्लेरुंग में साहित्य सार्वजनिक बहस का मंच बना, फिर गोएथे शिलर के क्लासिक दौर में बिल्डुंग यानी आत्मविकास का आदर्श आया, फिर रोमांसवाद में अंदर की दुनिया, इनर लिश्काइट पर जोर दिया गया।
और ये यात्रा आगे कैसे बढ़ती है, मतलब आधुनिक समय तक?
हाँ हाँ, फिर 19वीं सदी की राजनीतिक उथल पुथल और यथार्थवाद आता है, फिर 20वीं सदी में आधुनिकतावाद का संकट, मान, काफ्का, रिल्के जैसे लेखक जो आधुनिक इंसान के अकेलेपन और बेचैनी को दिखाते हैं।
हाँ हाँ,
इसके बाद नाजी दौर की भयानक छाया और साहित्य पर उसका असर, फिर जर्मनी का विभाजन और दो अलग साहित्यिक धाराएं।
अच्छा।
और आखिर में युद्ध के बाद का दौर, जब साहित्य का मुख्य काम बना वर्गांगन हाइट्स बवेल्टेगुंग यानी अतीत का सामना करना, और फिर जर्मनी का एकीकरण। ये एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है।
चलिए इस कहानी के कुछ अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत आपने लूथर और भाषा लगभग 1500-1750 से की थी। लूथर का बाइबल अनुवाद इतना अहम क्यों था?
देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, जैसा बॉयल्स जोर देती हैं, ये एक भाषाई क्रांति थी।
भाषाई क्रांति?
जी।
कैसे?
उस समय जर्मन भाषा की कई बोलियां थीं, कोई एक स्टैंडर्ड रूप नहीं था। लूथर के अनुवाद ने, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, एक तरह की उच्च जर्मन भाषा को स्थापित किया, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ और समझ सकते थे।
अच्छा।
इसने पहली बार उन बिखरे हुए जर्मन भाषी लोगों को एक साझा जमीन दी, भाषा की जमीन। बॉयल के शब्दों में कहें तो यहीं से उस सांस्कृतिक राष्ट्र की नींव पड़नी शुरू हुई जिसका जिक्र हमने किया था। वो जो विचार है ना, जहां राजनीतिक राष्ट्र नहीं था, वहां भाषा और साहित्य ही राष्ट्र की जमीन बने, वो यहीं से जड़ पकड़ता है।
समझ गया। भाषा ने वो धागा दिया जिसने सबको पिरोना शुरू किया। इसके बाद ज्ञानोदय, आउफक्लेरोंग, लगभग 1750 से 1786 का जिक्र आता है। इसमें साहित्य की भूमिका कैसे बदली?
यहाँ साहित्य मतलब महलों और चर्च की दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच बहस का जरिया बना। गॉटहोल्ड, एफ्राइम लेसिंग जैसे विचारक और नाटककार इस दौर के बड़े नाम हैं।
लेसिंग?
उन्होंने थिएटर, पत्रिकाओं, रीडिंग क्लब्स के जरिए एक सार्वजनिक क्षेत्र बनाने में मदद की।
पब्लिक स्फीयर?
हाँ, पब्लिक स्फीयर। ये ऐसी जगहें थी जहाँ नैतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि दबी जुबान में राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती थी। लेसिंग ने फ्रांसीसी नाटकों की नकल करने के बजाय जर्मन मध्यम वर्ग की जीवन और तर्क पर आधारित नाटक लिखे।
अच्छा।
तो साहित्य अब सिर्फ मनोरंजन या उपदेश नहीं रहा, वो समाज में चल रही बहसों का एक अहम हिस्सा बन गया।
और फिर आता है जर्मनी का तथाकथित स्वर्ण युग, वाइमार क्लासिकलवाद, लगभग 1786-1805, गोएथे और शिलर का दौर। यहाँ क्या खास था?
हाँ, ये बहुत ही छोटा लेकिन प्रभावशाली दौर था। देखिए, फ्रांस में क्रांति हो रही थी, यूरोप में उथल पुथल थी। ऐसे में गोएथे और शिलर ने सीधे राजनीति में कूदने के बजाय एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने बिल्डुंग का विचार सामने रखा।
बिल्डुंग, ये क्या है?
इसका मोटा मोटा मतलब है कला, साहित्य और दर्शन के जरिए व्यक्ति का संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण आत्मविकास।
अच्छा, यानी उनका मानना था कि अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो पहले हमें एक बेहतर इंसान बनाने होंगे और कला इसमें मदद करेगी।
बिल्कुल, यही बॉयल का एक मुख्य तर्क है जब वो इस दौर की बात करती हैं। बिल्डुंग का मतलब था कि समाज सुधार का रास्ता व्यक्ति के आत्म सुधार से होकर जाता है और कला इसका सबसे बड़ा साधन है। गोएथे का मशहूर उपन्यास विल्हेल्म माइस्टर्स अप्रेंटिसशिप इसी बिल्डुंग की कहानी है। एक नौजवान कैसे अनुभवों और कला के जरिए खुद को गढ़ता है। इसे पहला बिल्डुंग्स रोमान भी कहा जाता है।
अच्छा, फॉर्मेशन नॉवल।
हाँ, और उनका नाटक फाउस्ट तो आधुनिक इंसान की ज्ञान और अनुभव की कभी न खत्म होने वाली प्यास का प्रतीक है। शिलर के नाटक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के आदर्शों पर जोर देते थे। इस दौर ने जर्मन संस्कृति को एक उच्च दार्शनिक और कलात्मक पहचान दी।
वाह, यानी समाज बदलने से पहले खुद को बदलो कला के जरिए। ये तो आज भी सोचने वाली बात है ना?
बिल्कुल।
लेकिन इस विचार से कहानी आगे कैसे बढ़ी? रोमांसवाद यानी रोमांटिसिज्म लगभग 1795-1830 में क्या हुआ?
हाँ, तो जब बाहरी दुनिया में नेपोलियन के युद्धों से उथल पुथल मची थी तो लेखकों का ध्यान अंदर की ओर मुड़ा।
अंदर की ओर?
हाँ, ये सिर्फ पलायन नहीं था, बॉयल इसे भी एक तरह का राजनीतिक बयान मानती हैं। अगर बाहरी राजनीतिक राष्ट्र बनाना मुश्किल था तो सच्चा राष्ट्र व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में भावनाओं, सपनों, कल्पना, यहाँ तक कि रहस्यवाद में खोजा जा सकता था। इसे इनर लिखकाइट कहते हैं।
इनर लिखकाइट?
अच्छा।
नोवालिस जैसे कवियों ने रात, मृत्यु और प्रेम के रहस्यों को गाया। श्लेगल बंधुओं ने विडंबना और कला की स्वायत्तता पर जोर दिया।
और इसी दौर में वो लोक कथाएं वगैरह भी आईं, ग्रिम भाई।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
रोमांसवाद की एक और अहम धारा थी जिसने पुरानी लोक कथाओं, मिथकों और मध्ययुगीन इतिहास में जर्मन लोक आत्मा वोल्क्सगाइस्ट की तलाश की।
फोक्सगाइस्ट?
हाँ, ग्रिम भाइयों ने इन्हीं लोक कथाओं को इकट्ठा किया। इस सोच ने इस विचार को और मजबूत किया कि जर्मन पहचान किसी राजनीतिक सीमा में नहीं, बल्कि साझी भाषा, कहानियों और एक रहस्यमयी साझा अतीत में बसती है। राष्ट्र अब बाहर से ज्यादा अंदर की चीज बन गया।
लेकिन ये शांति या अंदर की ओर देखना ज्यादा देर टिका नहीं होगा। 19वीं सदी 1890 में क्या टकराव सामने आए?
सही कहा आपने, गोएथे के बाद वो एकता टूटने लगी। एक तरफ हाइने जैसे लेखक थे जो बहुत तीखे और राजनीतिक रूप से जागरूक थे।
हाइने, हाँ।
उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों में जर्मनी के राजनीतिक पिछड़ेपन, सेंसरशिप और सामाजिक अन्याय की जोरदार आलोचना की। उनकी विडंबना कमाल की थी। दूसरी तरफ बीडरमायर जैसी धारा थी जो राजनीति से दूर हटकर मध्यम वर्ग की शांत घरेलू दुनिया पर ध्यान देती थी।
अच्छा, और यथार्थवाद?
हाँ, सदी के उत्तरार्ध में, खासकर 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद थियोडोर फोंटाने जैसे यथार्थवादी लेखक सामने आए।
फोंटाने?
उन्होंने नए एकीकृत जर्मन साम्राज्य की सामाजिक सच्चाइयों, बर्लिन का समाज, अभिजात्य वर्ग का खोखलापन, महिलाओं की स्थिति का चित्रण किया। लेकिन बॉयल बताती हैं कि ये यथार्थवाद भी अक्सर सीधे टकराव से बचता था। आलोचना छुपी हुई होती थी।
साहित्य अब इस नए ताकतवर लेकिन कहीं ना कहीं सत्तावादी राज्य में अपनी जगह तलाश रहा था, जो गोएथे और शिलर के मानवतावादी आदर्शों से काफी अलग था।
और फिर कहानी पहुंचती है आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म, 1890 to 1945। ये तो बड़े संकट का दौर लगता है।
बिल्कुल, ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। औद्योगिकरण, शहरीकरण, पुराने मूल्यों का टूटना, विश्व युद्ध का खतरा।
साहित्य ने इस गहरे संकट और बेचैनी को आवाज दी।
हाँ,
हाँ। रेना मारिया रिल्के, उनकी कविता ने भाषा की संभावनाओं को नए आयाम दिए। उन्होंने चीजों के अंदर झांकने की कोशिश की, एक ऐसी दुनिया में जहां ईश्वर मर रहा था वहां सुंदरता और अर्थ की तलाश की।
और काफ्का?
और फिर फ्रांस काफ्का, शायद आधुनिक युग के अकेलेपन, डर और सिस्टम के जाल में फंसे इंसान के सबसे बड़े प्रतीक।
हाँ।
प्राग के जर्मन भाषी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले काफ्का ने अपने उपन्यासों द ट्रायल, द कासल और कहानियों द मेटामॉर्फोसिस में नौकरशाही की बेतुकी दुनिया, अपराध बोध और अस्तित्वगत भय को जिस तरह दिखाया, वो आज भी हमें झिंझोड़ देता है।
काफ्का पढ़ते हुए तो वाकई आज भी घुटन महसूस होती है। लगता है जैसे वो आज के कॉर्पोरेट या सरकारी दफ्तरों की ही बात कर रहे हों। ये आधुनिक जीवन का सच दिखाता है।
सही कहा। बॉयल के अनुसार ये लेखक उस गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संकट को पकड़ रहे थे जो जर्मनी को पहले विश्व युद्ध और फिर नाजीवाद की तबाही की ओर ले जा रहा था।
उफ।
नाजी दौर ने तो इस पूरी परंपरा पर एक भयानक हमला किया। या तो साहित्य को प्रोपेगेंडा बनाया, या लेखकों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या मार डाला। इसने जर्मन साहित्य में एक गहरा जख्म छोड़ा।
और इस तबाही के बाद, युद्ध के बाद का दौर 1945 से 1990, यहाँ साहित्य ने क्या भूमिका निभाई?
1945 को जर्मनी में स्टुंडे नुल कहा जाता है। मतलब सब कुछ खत्म, अब नए सिरे से शुरुआत करनी है। इस दौर में साहित्य का सबसे बड़ा और मुश्किल काम बना फरगंगेन हाइट्स बिवाल्टिगुंग।
फरगंगेन हाइट्स बिवाल्टिगुंग
क्या मतलब है इसका?
मतलब अतीत का सामना करना, खासकर नाजी दौर के अपराधों और उसमें आम जर्मनों की मिलीभगत का। अब साहित्य का काम राष्ट्र बनाना नहीं रह गया था। बॉयल के शब्दों में कहें तो 1945 के बाद साहित्य का काम राष्ट्र बनाना नहीं, बल्कि नैतिक तबाही के मलबे को खोदना और भूलने की प्रवृत्ति को चुनौती देना बन गया।
यानी साहित्य अब आईना बन गया जो समाज को उसकी कड़वी सच्चाई दिखा रहा था। बिल्कुल। गुंटर ग्रास अपने उपन्यास द टिंड्रम के साथ और नोबेल पुरस्कार विजेता हाइनरिश बॉयल जैसे लेखकों ने जर्मन समाज को झकझोड़ा, उन्हें याद दिलाया कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। उन्होंने उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की जो युद्ध के बाद छा गई थी।
और जर्मनी का विभाजन भी तो हुआ था।
हाँ,
उसका साहित्य पर क्या असर पड़ा?
हाँ, विभाजन ने दो अलग तरह की साहित्यिक दुनियाएं बना दी। पश्चिमी जर्मनी में लेखक ज्यादातर लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े थे, सत्ता के आलोचक थे और अतीत पर खुलकर बहस कर रहे थे।
और पूर्वी जर्मनी में?
वहीं पूर्वी जर्मनी में लेखकों को समाजवादी राज्य की सीमाओं के अंदर काम करना पड़ता था। क्रिस्टा वुल्फ जैसी लेखिकाओं ने व्यक्ति की अंतरात्मा और राज्य की विचारधारा के बीच के तनाव को बड़ी कुशलता और अक्सर मतलब सांकेतिक भाषा में दिखाया।
अच्छा।
ये दोनों साहित्य शीत युद्ध की राजनीति और अतीत की छाया से गहरे तौर पर प्रभावित थे।
ये तो वाकई एक लंबी और जटिल यात्रा रही है जर्मन साहित्य की। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य विषय या संदेश निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? पहला तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि साहित्य ने एक काल्पनिक समुदाय बनाया जब असली राजनीतिक समुदाय नहीं था।
हाँ हाँ, ये सबसे अहम बात है। दूसरा, बिल्डुंग का आदर्श, कि समाज को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति का नैतिक और कलात्मक विकास जरूरी है।
ये तो यूनिवर्सल लगता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ जर्मन विचार नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल आइडिया लगता है, खासकर आज के दौर में।
तीसरा, वो आंतरिकता, इनर लिख्टकाइट पर जोर, बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच अपने अंदर की दुनिया, भावनाओं, आत्मा पर ध्यान देना। ये जर्मन साहित्य का एक चरित्र सा बन गया।
हाँ, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू दिखे। चौथा, दर्शन के साथ इसका गहरा रिश्ता। जर्मन लेखक अक्सर बड़े दार्शनिक सवालों से जूझते हैं, स्वतंत्रता, नैतिकता, इतिहास का मतलब क्या है।
हाँ, बॉयल का वो विचार भी था कि जर्मन साहित्य और दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
पांचवा, जो युद्ध के बाद बहुत अहम हो गया, वह गांगन हाइट्स बवेल्टिगुंग, अतीत का सामना। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समाज के लिए अपने मुश्किल अतीत से आंखें मिलाना कितना जरूरी है।
हाँ, उसे भूलना या कालीन के नीचे छुपाना कितना खतरनाक हो सकता है।
और छटा,
खासकर आधुनिक दौर में पहचान और भाषा का संकट, वो अकेलापन, अर्थहीनता की भावना, सिस्टम में खो जाने का डर, जिसे काफ्का ने दिखाया, ये वो सवाल हैं जो आज भी हमें परेशान करते हैं।
बॉयल के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें अगर हम यादगार विचारों के तौर पर दोहराना चाहें तो हमने कुछ का जिक्र तो किया ही है।
हाँ, जैसे पहला, जहाँ राजनीतिक राष्ट्र नहीं था, वहाँ भाषा और साहित्य ही राष्ट्र की जमीन बने। ये दिखाता है कि संस्कृति कितनी ताकतवर हो सकती है।
सही।
दूसरा, बिल्डुंग का मतलब था कि समाज सुधार का रास्ता व्यक्ति के आत्म सुधार से होकर जाता है, और कला इसका सबसे बड़ा साधन है। ये कला को एक बहुत ऊंचा मकसद देता है।
और तीसरा, वो युद्ध के बाद वाला।
हाँ, 1945 के बाद साहित्य का काम राष्ट्र बनाना नहीं, बल्कि नैतिक तबाही के मलबे को खोदना और भूलने की प्रवृत्ति को चुनौती देना बन गया। ये साहित्य की बदलती भूमिका और उसकी नैतिक जिम्मेदारी को दिखाता है।
बिल्कुल, ये विचार हमें जर्मन साहित्य को समझने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साहित्य और समाज के रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करते हैं।
हाँ,
सही कहा। तो इन सब बातों से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, क्या कुछ व्यावहारिक सबक हैं?
पहला तो यही है कि कहानी और संस्कृति की ताकत को कम न समझें। वे हमें जोड़ती हैं, हमें पहचान देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, चाहे वो हमारे देश की लोक कथाएं हों या क्षेत्रीय साहित्य।
बिल्कुल। दूसरा, मुश्किल अतीत से सीखने की हिम्मत रखना।
हाँ।
जर्मन साहित्य का वो वर्गेन हाइट्स बेवल्टिगुंग वाला पहलू हमें याद दिलाता है कि अपने इतिहास के काले अध्यायों को स्वीकार करना और उनसे सीखना क्यों जरूरी है, ताकि वो गलतियां दोहराई ना जाएं।
हाँ, ये किसी भी समाज के लिए जरूरी है, हमारे लिए भी। तीसरा, हम बिल्डुंग के विचार से प्रेरणा ले सकते हैं, मतलब कला, साहित्य, संगीत या किसी भी ज्ञान को सिर्फ टाइम पास या डिग्री के लिए ना देखें।
हाँ,
इन्हें खुद को एक बेहतर, ज्यादा समझदार और संवेदनशील इंसान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। थोड़ा समय निकालें कुछ अच्छा पढ़ने, सुनने या देखने के लिए जो हमें सोचने पर मजबूर करे।
सही बात। और चौथा, शायद ये कि विचारों के असर को लेकर सावधान रहें। साहित्य और कला में जो विचार पेश किए जाते हैं, वो धीरे धीरे समाज की सोच को बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी।
बिल्कुल, इसलिए ये जरूरी है कि हम आलोचनात्मक तरीके से पढ़ना और सोचना सीखें।
तो चलिए इस चर्चा को समेटते हैं। आपके लिए इस पूरी बातचीत से सबसे अहम या चौंकाने वाली बात क्या रही? मेरे लिए तो ये समझना बहुत दिलचस्प था कि कैसे एक देश की राजनीतिक कमी ने उसके साहित्य को इतना ज्यादा दार्शनिक, आत्मकेंद्रित और पहचान के सवालों से जूझने वाला बना दिया। साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास और समाज का एक जरूरी दस्तावेज है।
हाँ, ये तो है। मेरे लिए शायद दो बातें खास रहीं। पहली, बॉयल का ये दिखाना कि संस्कृति और भाषा कैसे राजनीतिक सीमाओं से ज्यादा टिकाऊ हो सकती हैं, कैसे उन्होंने बिखरे हुए लोगों को जोड़े रखा।
ये आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है।
बिल्कुल। और दूसरी, वो दो जर्मन शब्द बिल्डुंग और वर्गेंगन हाइट्स बेवेल्टिगुंग, एक भविष्य की ओर देखता है, बेहतर इंसान कैसे बने, दूसरा अतीत की ओर अपने गलतियों का सामना कैसे करें। बॉयल हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य इन दोनों जरूरी कामों में समाज का साथी बन सकता है।
सही। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, इसका एक गहरा नैतिक और सामाजिक मकसद हो सकता है।
हाँ।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।